नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को बजट पर चर्चा फिर से शुरू होगी। भारत ने बिम्स्टेक में आतंकवाद से और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए संशोधित परिणाम जारी किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों के लिए नौकरी में आरक्षण की घोषणा की। असम के मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। भारत ने एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल में उसने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। और पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आज रात सीन नदी के किनारे पर होगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को बजट पर चर्चा फिर से शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाजपा के जुगल किशोर ने कहा कि यह बजट आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बजट लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। भाजपा की कंगना रनौत ने बजट में हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के श्री जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हरियाणा की लंबित परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि बजट किसानों की चिंताओं का समाधान करने में असफल है। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में अल्पकालिक लोकलुभावन विचारों के बजाय मध्यम और दीर्घकालिक विचारों को अपनाया है। वहीं सीपीआई सदस्य पी संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि बजट जन विरोधी और संघीय विरोधी है। राजद के एडी सिंह ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए संशोधित फाइनल स्कोर कार्ड जारी किया। जो उम्मीदवार नीट के लिए उपस्थित हुए थे वे अपने परिणाम और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट questions.nta.ac.in और neet.ntaonline.in पर देख सकते हैं। परीक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि 17 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक प्राप्त की है। 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान जिन 1563 उम्मीदवारों को समय का नुकसान हुआ था उनके लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सरकार ने पुलिस विभाग में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस और अन्य सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती,
कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो,
कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहरा, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग तथा नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने के उपायों पर चर्चा की। म्यांमा के निपिदा में बिम्स्टेक बैठक में उन्होंने बिम्स्टेक कनेक्टिविटी, दूसरे बंदरगाह सम्मेलन के आयोजन और हिमालय की नदी प्रणालियों की जल सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी संबोधित किया। श्री डोभाल ने म्यांमा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माओंग से भी मुलाकात की। भारत ने एशियाई आपदा प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन में सहयोग और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस दिशा में कई वैश्विक पहल की हैं, जिसमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना भी शामिल है। भारत और अमरीका ने आज अमरीका से चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत दोनों देश पुरातात्विक सामग्रियों के अवैध व्यापार, आयात, निर्यात और तस्करी को रोकने के लिए साथ काम करेंगे। यह अमरीका के साथ भारत का पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी और अंतर सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिका में जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां अब भारत में सुगमता के साथ में वापस लाई जा सकेंगी। ये एग्रीमेंट अमेरिका से प्रॉपर्टी जाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के साथ में होने से आने वाले समय में दूसरे अन्य देशों के बीच में भी इस तरह का एग्रीमेंट हो सके, इसकी संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। तो ये भारत के लिए जो है आज ये एग्रीमेंट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्रोता इस पूरे साक्षात्कार को आकाशवाणी गोल्ड पर आज रात 9:15 बजे से सुन सकते हैं। असम के मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। लगभग 700 साल पुरानी मोईदाम ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मोईदाम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला सांस्कृतिक स्थल और काजीरंगा और मानस के बाद पूर्वोत्तर का तीसरा स्थल है। विश्व धरोहर संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या के मामलों में भारत अब विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घोषणा पर गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि चराईदेव मोईदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अब अधिक से अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह पूर्वोत्तर और असम के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सुनिए, क्या आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का इंतजार तो नहीं कर रहे?
सही और ईमानदारी से दी हुई जानकारी से फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिफंड क्लेम्स एक महीने के भीतर ही जारी कर दिए जाते हैं।
इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड पर आप अपने रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शन चेक कर सकते हैं।
परंतु गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड क्लेम करने से रिफंड हो जाता है डिले, क्योंकि हर ई फाइल हुए रिटर्न की होती है गहन जांच और जानकारी में त्रुटियां पाए जाने पर CBC ITR से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सूचना दी जाती है। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में होती है देरी।
तो फिर देरी से बचने के लिए ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दें जानकारी।
प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज द्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादी हमलों पर श्री मोदी ने पाकिस्तान की आलोचना की।
लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। वायुसेना के अग्निवीर वायु महिलाओं ने आज करगिल दिवस पर नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पहली ड्रिल की। वायुसेना के सैन्य बैंड ने शहीदों को देशभक्ति गीतों के माध्यम से संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। अग्निवीर वायु को अग्निपथ योजना के अंतर्गत पिछले साल जून में वायुसेना में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केन्द्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टिपत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों और ढाबों के मालिकों और श्रमिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर स्थगन आदेश पढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीआर गवई ने सोमवार से शुरू होने वाले शीर्ष अदालत के विशेष लोक अदालत सप्ताह में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायालय देश के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के लाभ के लिए एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन करेगा।
Local adalats are a means to provide a speedy and affordable justice to the citizens. Various matters such as matrimonial matters, family disputes, property disputes, service disputes, motor accident claims disputes, so also the land acquisition matters can be resolved through the local adalats.
पेरिस ओलंपिक्स 2024 की रंगारंग शुरुआत आज से हो रही है। अब से कुछ ही देर में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे होगा। यह पहली बार है जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में न होकर खुले में आयोजित होने जा रहा है। पेरिस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
दो सौ से भी ज्यादा मुल्कों के कोई 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी आज पेरिस की ऐतिहासिक सेन नदी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे। 117 खिलाड़ियों वाले भारतीय दल की उम्मीदों के ध्वजवाहक बनेंगे अचंता शरद कमल और पीवी सिंधु। आमतौर पर स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन समारोह से अलग पेरिस ने इस बार सेन नदी को ही उद्घाटन समारोह का मंच बनाया है। 19 नावों के जरिए ही खिलाड़ी तट पर बैठे दर्शकों का अभिवादन करेंगे और पेरिस की पहचान आईफिल टावर के पास आखिर में उतरेंगे। ओलंपिक के 5 छलों और सृष्टि के 5 मूलभूत तत्वों का पूरा ख्याल रखा गया है इन खेलों में। ठीक 100 साल बाद हो रहे हैं पेरिस में ओलंपिक खेल और इन खेलों को भव्य और रंगारंग बनाने में इस शहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। औपचारिक उद्घाटन के बाद कल से शुरू हो जाएंगी स्पर्धाएं जो आने वाले 16 दिनों तक लेंगी खिलाड़ियों के समर्पण और निश्चय की अग्नि परीक्षा। भारतीय दल को इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है और इस बार खेल प्रेमी हमारे पदकों को 2 अंकों में देखना चाहते हैं। आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
भारतीय महिला टीम एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई है। उसने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को बजट पर चर्चा फिर से शुरू होगी। भारत ने बिम्स्टेक में आतंकवाद से और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए संशोधित परिणाम जारी किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों के लिए नौकरी में आरक्षण की घोषणा की। असम के मोईदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।